ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर निताई की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। ओम नमो शिवाय। तो आज के सत्संग में फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर 16 अध्याय 16 देवी तथा असुरी स्वभाव द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर स्टार्ट हो चुका है ना। तो कल हमने एक वर्ष किया था। तो इस चैप्टर में मैंने कल बताया था आपको कि 16 चैप्टर में हमें भगवान डिटेल में बताएंगे कि डेमोनिक नेचर्स वाले लोगों में जिनका असुरी प्रवृत्ति होती है, दानवी स्वभाव होता है जिनका, उनमें कौन से गुण होते हैं, और देवी स्वभाव वालों में डिवाइन नेचर होती है जिनकी, उनमें कौन से गुण होते हैं। और इस चैप्टर के द्वारा हम ये समझ भी पाते हैं कि एक्चुअली हम लोग किस कैटेगरी में है ना। तो इस चैप्टर में हमें भगवान बताएंगे कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिसको हमें पहचानना है और हमें अपने अंदर बढ़ाना है। ऐसे कौन से गुण हैं जिसको हम अपने अंदर बढ़ाएंगे तो प्रभु का हमें सामिप्य मिलेगा, प्रभु का हमें प्रेम मिलेगा। और ऐसी कौन सी बुरी बातें हैं, ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं जो हम सबके अंदर है, उनको हमें पहचानना है और उसको भगवान के साथ जुड़कर एक एक करके खत्म करना है ना। डेमोनिक क्वालिटीज को कैसे हमें पहचानना है कि हमारे अंदर है, तो उसको एक एक करके हमें खत्म करना है। तो कल हमने एक ही वर्स किया था, डिवाइन क्वालिटीज समझी थी हमने कल, देवी गुण हमने समझे थे कल जो कि बहुत सारे थे। अगर हम अपने अंदर देवी गुण लाएंगे तो हम लोग मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एंट्री पा सकते हैं। तो हमें कल्टीवेट करनी है वो क्वालिटीज अपने अंदर। हरी बोल। मैं पढ़ लेती हूँ, हाँ जी। श्लोक नंबर 4। हे प्रथा पुत्र, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हे प्रथा पुत्र, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो कल हमने डिवाइन क्वालिटीज डिस्कस की थी, तो आज हम आसुरी क्वालिटीज डिस्कस कर रहे हैं जिनको राक्षसी गुण भी कहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी गुणों के बारे में, नेगेटिव क्वालिटीज के बारे में जो डिवाइन के ऑपोजिट है, उनके बारे में हमें बताया। और जो होलिस्टिक एजुकेशन जो हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को देनी चाहिए, मतलब ये जो क्वालिटीज हैं जिनको पेरेंट्स को बताना है कि ये नेगेटिव क्वालिटीज हैं, अगर हमारे बच्चों में ये क्वालिटीज अगर हमें पता होंगी कि ये नेगेटिव क्वालिटीज हैं तभी हम बच्चों को आगे बता पाते हैं। तो इन नेगेटिव ट्रेट्स से हमें अपने आप को भी बचाना है और अपने बच्चों को भी दूर रखना है। क्योंकि देखो यहाँ से मैं अपने आप को और अपने परिवार को इन नेगेटिव क्वालिटीज से दूर रखूंगी है ना, और वहां से अगर आप सब अपने अपने आप को और अपने परिवारों को इन नेगेटिव हैबिट्स से, नेगेटिव क्वालिटीज से दूर रखोगे तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है ना। इस पूरे समाज में जो हम बोलते रहते हैं कि आजकल बहुत नेगेटिविटी हो गई है समाज में, लोगों में बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो अगर हम अपने पे फोकस करने की कोशिश करें ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते में चले ना, तो पूरे समाज में पॉजिटिविटी का परिवर्तन आ जाएगा। तो नेगेटिव क्वालिटीज क्या हैं इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले लिखा है दम्भ। दम्भ मतलब झूठा, आडंबर, पाखंड, मतलब बाहर से दिखाना कि मैं बहुत धार्मिक हूँ लेकिन अंदर से मैं मटेरियलिस्टिक हूँ, है ना। मैं बाहर से तो डिजायर कर रही हूँ कि सब मेरी रिस्पेक्ट करें, है ना, बट मैं एक्चुअली मैं डिजर्व नहीं करती। भगवान को तो पता है अंदर से कि मैं अंदर से कैसी हूँ, बाहर से मैं क्या बिहेव कर रही हूँ, है ना। तो बाहर से तो हम सब चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट हो, बट अंदर से रिस्पेक्ट वो डिजर्व नहीं करती। मतलब बाहर से अच्छा बनना बट अंदर से अच्छाई कोसों दूर है। नेक्स्ट क्वालिटीज दर्प। दर्प मतलब प्राइड, प्राइड ऑफ वेल्थ, प्राइड ऑफ नॉलेज, कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मतलब हम बहुत स्पेशल हैं, जैसे होते ना एक मैं की फीलिंग कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत गाड़ियां हैं, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोग एक्चुअली बहुत ड्राई होते हैं, बात भी ढंग से नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोगों में प्राइड होता है अपने पैसे का, अपने इंटेलिजेंस का। ऐसे लोग दूसरों की बात बिल्कुल नहीं सुनते, ऐसे लोगों का प्राइड रूल करता है उनके दिमाग में, है ना। ऐसे लोगों को कुछ नहीं समझा सकते हम लोग, है ना। हमारे आसपास ही देखो हमें लोग दिख जाते हैं, या हमें ऐसी नेचर होती है। तो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, हमें अगर हम सक्सेसफुल भी हैं लाइफ में तो हमें क्या करना है, हमें ह्यूमिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, है ना। थैंकफुल टू गॉड, शुक्राना कि प्रभु मुझे इतना कुछ मिला हुआ है, ये सोचना कि मैं कैसे यूज करूं इन चीजों का, इन रिसोर्सेज का, ताकि समाज कल्याण में थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकूं, निष्काम भाव से मैं सबकी हेल्प कर सकूं। निमित्त मात्र समझते हो कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बट मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, करने वाला तो ऊपर वाला है। तो हम क्या हो सकते हैं फिर, प्राइड से बचे रह सकते हैं। और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको हम समझा अगर नहीं पाएंगे तो हम उनके लिए भगवान से प्रेयर कर सकते हैं कि भगवान इनको भी बुद्धि दो। फिर नेक्स्ट आसुरी स्वभाव, आसुरी गुण आता है अभिमान। अभिमान मतलब मेरा मान सम्मान बढ़े, मतलब जो मेरे पास है उसका घमंड करना, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि बहुत कुछ हो जिनके पास, उन्हीं को घमंड होता है, है ना। कईयों को आपने देखा होगा कि बहुत थोड़ा सा भी होता है लेकिन घमंड कूट कूट के भरा होता है उनमें, है ना। तो ऐसे लोग अपने आप को सुपीरियर बनाने के चक्कर में दूसरों को नीचे गिराते हैं, दूसरों से मिसबिहेव करते हैं। और फिर फोर्थ आ जाता है क्रोध, एंगर, मतलब छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना। और ये सच में ये दुश्मन है हमारे सारे रिलेशनशिप्स के लिए, है ना। चाहे वो घर का वातावरण हो, चाहे ऑफिस का हो, जिनको गुस्सा आता है, ये दोनों ही फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ उनकी खराब रहती है अगर जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है। तो क्रोध एक आसुरी गुण है, और जो एंगर करता है ना उसको कभी शांति नहीं मिलती, और जो उसके आसपास के लोग हैं वहां पे वो अशांति बना के रखता है, है ना। मतलब आसपास में भी अशांति का वातावरण बना रहता है, और जब अशांति होगी तो हम हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी की बातें कर ही नहीं सकते। हम तो उसी में घूमते रहते हैं, उस गुस्से के क्षणों में ही हम घूमते रहते हैं, उसके वाइब्रेशंस को ही हम सहते रहते हैं, है ना। तो एंगर पर हम सबको वर्क करना है। अब ये नहीं सोचना है कि अब एंगर मैं नहीं करती, मेरे हस्बैंड करते हैं या मेरे बच्चे करते हैं, हमें सिर्फ अपने आप पे वर्क करना है ना। तो वो वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली हमारे हस्बैंड्स पे, हमारे बच्चों पे जाएंगे। तो एंगर पर हम सबको वर्क करना है ताकि उसको हम मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके। और एक्चुअली एंगर हमें आता कब है, जब फ्रस्ट्रेशंस हो जाए ना, जब हमारी डिजायर्स पूरी ना होती हो डिजायर्स, और वहां पे फ्रस्ट्रेशन आती है, तो वहां पे क्या होता है फिर, जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब हमें क्रोध आता है ना। तो हमें देखना है, हमने ये नहीं सोचना क्रोध को कम करना, हमने ये सोचना है कि एक्चुअली ये आता कहाँ से है, क्या चीज ऐसी होती है कि जहां पे मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाती। देखो अभी फिलहाल अपने लिए क्रोध की बात हो रही है कि मेरे को क्रोध अगर आता है तो मैं किस बातों पे मैं क्रोध करती हूँ, उस पॉइंट को लेना है। मान लो मेरे को क्रोध आ रहा है कि मेरे को गाड़ी लेनी है, है ना, या घर लेना है, या कुछ भी ऐसी चीज जो मैं डिजायर कर रही हूँ, है ना, लेकिन वो अभी चीजें नहीं हो पा रही है, टाइम लगता है देखो हर चीज में, है ना। तो हमें सोचना है कि मैं क्या क्रोध बिना मतलब के करती रहती हूँ, बिना ऐसी डिजायर्स के जिसका कोई मतलब नहीं है, है ना। जो काम अभी हो नहीं सकता, जो डिजायर अभी पूरी नहीं हो सकती, क्या उसके लिए मैं क्रोध करती रहती हूँ। तो हमें चेक करना है अपनी उन हैबिट्स पे, उन डिजायर्स पे, कि मैं कहाँ कहाँ पे क्रोध करती हूँ। चेक रखना है अपने आप पे, अपनी नेचर पे, अपने उन बातों पे जहाँ पे मैं क्रोध करती हूँ। और जो दूसरे क्रोध करते हैं उनके लिए एक माला कर लो, है ना, उनके लिए चैंटिंग कर लो, जिन पे भी आपको श्रद्धा है, है ना, किसी भी भगवान पे, तो आप उनके नाम की एक माला कर लो और भगवान से प्रार्थना कर दो कि प्रभु इनको भी शांति दो, इनको आप अपने रास्ते में चलाओ। फिर ये कठोरता आ गया नेक्स्ट गुण। कठोरता मतलब हार्शनेस, क्रुएलिटी। देखो बहुत बार ये देखा जाता है कि जब किसी के पास बहुत चीजें आ जाती है ना, है ना, तो वो गरीबों के साथ या बाकी लोगों के साथ जो उनके पोजीशन के नीचे होते हैं ना, उनके साथ बड़ा हार्शली डील करते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि हार्शनेस इज ए डेमोनिक क्वालिटी, एक राक्षसी गुण है हार्शनेस। आप देखो हो सकता है जिंदगी में आगे बढ़ गए हो, बहुत चीजें आपके पास आ गई, या भगवान ने आपको बहुत ब्लेसिंग दी हुई है ना, बट कोई भी इतना आगे नहीं बढ़ा है कि उनको ये राइट मिल जाए कि वो दूसरों को दबाए, क्योंकि वो भी भगवान के बच्चे से, आप भगवान के बच्चे हो, मैं भगवान की बेटी हूं, तो वो भी भगवान के बच्चे हैं जिनको हम दबा के रखना चाहते हैं, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा सच में कर रहा है तो वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा है, उसकी डिमोशन हो रही है स्पिरिचुअल एंगल से। और फ्रेंड्स हमें हमेशा ध्यान देना है कि भगवान हमें देख रहे हैं, तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम सबसे जेंटली बात करें। देखो कई बार हमने ये भी देखते हैं, हम ये भी नोटिस करते हैं कि कई बार लोग प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत जेंटल होंगे, बहुत स्वीटली बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सॉरी भी करेंगे, थैंक यू भी करेंगे, लेकिन घर आकर अपने परिवार के साथ बड़ा हार्श हो जाते हैं, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। तो ये भी एक रॉन्ग बिहेवियर है, उसका भी हमें ध्यान रखना है ना, हमें दोगलेपन से बचना है। हम कहाँ पे ये कठोरता या हार्शनेस कहाँ पे अपनाते हैं कि पता है कि अगला सुन लेगा। हम अपने बॉस के आगे क्यों नहीं कर पाते ये सारी बातें, अगर हम ऑफिस में है या अगर हम अपने टीचर्स को या हम अपने से बड़ों को क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि पता है कि वहां से हमें सुनने को मिल जाएगा। हम अपने से नीचे वालों को दबाते हैं, है ना। तो उस बिहेवियर से हमें वापस आना है, उस बिहेवियर को हमें छोड़ना है एक्चुअली, है ना, इस दोगलेपन से बचना है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी सारी कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए है, कि बाहर आप बहुत अच्छे से बात करते हो अपने बॉसेस के साथ, लेकिन घर आकर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत हार्शली बिहेव करते हो। तो फैमिली लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, तो फैमिली लाइफ में हमें हार्शनेस से बचना है। और कठोरता नॉनवेज खाने वालों के लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि नॉनवेज अगर हम खा रहे हैं तो हमें इसका मतलब हमारे अंदर दया नहीं है, तो हमें नॉनवेज खाने से परहेज करना है। आप जैसे जैसे स्पिरिचुअली एडवांस होते जाओगे ना, आपकी बॉडी ही अलाउ नहीं करेगी आपको नॉनवेज खाने के लिए, है ना। तो अभी आप अभी खा रहे हो तो कोई बात नहीं, है ना, ये नहीं अब खा रहे हो तो मुझे सत्संग नहीं सुनना है या मैं कैसे सुन सकती हूँ, नहीं, आप सत्संग सुनोगे तभी आप नॉनवेज खाना बंद करोगे। जब आप आगे बढ़ोगे तो अपने आप ही आपकी बॉडी वो खाना बंद कर देगी। और नेक्स्ट असुरी गुण है इग्नोरेंस, अज्ञान, अंधकार। इग्नोरेंस मतलब एक व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा कि जीवन का जो परम लक्ष्य है वो ये समझना है कि वो शरीर नहीं, वो एक आत्मा है, है ना, और उसके बेस्ट फ्रेंड, उसके सुप्रीम फादर अल्टीमेटली भगवान है, और हमें उस तरह से जीवन जीना है, उस तरह से ड्यूटीज करनी है अपनी की हम धीरे धीरे भगवान की तरह बढ़ते रहें। जो भगवान पसंद करते हैं हमें वैसा जीवन जीना है। और जब हम ये बात नहीं समझते, छोटी सी बात है ना, और किसी और चीज को पाना जिंदगी का परम लक्ष्य बना लेते हैं, तो फ्रेंड्स फिर वो जीवन अंधकार है, इग्नोरेंस है ना। और फिर चीजों को पाने के चक्कर में हम बहुत बार अनएथिकल, इमोरल कामों के चक्कर में फंस जाते हैं, रैट रेस में फंस जाते हैं। जैसे कि दूसरे अनएथिकल काम कर रहे हैं तो हमें भी करने हैं, शायद आगे ऐसे ही बढ़ते होंगे। एक चीज मिलती है उसको एंजॉय नहीं करती है, दूसरी चीज पाने की हमारी डिजायर हो जाती है, और फिर दूसरी मिलती है तो फिर आगे दूसरी चीजों को चक्करों में हम भागना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी नेगेटिव ट्रेट्स हैं। और जो अज्ञानी लोग होते हैं, लोगों को भी हम एजुकेट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि उनको सब पता है ना, उनको क्या लगता है कि मैंने बहुत सारी पढ़ाई की हुई है, मैंने MBA की हुई है, मैंने PhD की है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो ये कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हैं। तो अब आप ये सोचिए कि ये सब क्वालिटीज अगर हम लोगों में होंगी तो हम इस वर्ल्ड को, इस संसार को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। तो जैसे पिछले श्लोक में हमने डिवाइन क्वालिटीज समझी थी, जो क्वालिटीज हमें हमारे अंदर बढ़ानी है एक्चुअली, जो कल समझी थी, अपने परिवारों में बढ़ानी, अब ये वो क्वालिटीज हैं जिनको हम सबको पहचान कर उनको मारना है। तभी फ्रेंड्स हम सब लोग मिलकर एक प्यारे समाज का, एक प्यारे परिवार का निर्माण कर पाएंगे, है ना। और भगवद गीता, भगवान श्री कृष्णा का ये मार्गदर्शन हमें अपने सिरों पर रखना है, अपने हार्ट में रखना है, अपने हृदय में लगाना है ना। भगवद गीता ऐसी बुक नहीं है कि फ्रेंड्स आपने ले ली और उसको रेड कपड़े से उसको ढक दिया और बस हो गया, उसकी पूजा अर्चना कर ली, जैसे कि ज्यादातर लोगों के घरों में यही हो रहा है ना। तो ये सारी बातें ढक के रखने के लिए नहीं है कि बस रख दो और उसकी पूजा अर्चना कर ली। सिर पर रखना, अपने हृदय से लगाना, मतलब उसको एब्जॉर्ब करना अपने अंदर और अपनी एवरीडे लाइफ में उसको लाने की कोशिश करनी है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें इन क्वालिटीज पर, जो अपनी डेमोनिक क्वालिटीज है, हमें उन पर वर्क करने की जरूरत है। जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ती हूँ मैं, श्लोक नंबर 5। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। देखो, देवी दिव्य गुण और आसुरी गुण दोनों पर हम बात कर चुके हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को अश्योर कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें दोनों गुणों के बारे में बताया है, लेकिन तुम में कोई डेमोनिक क्वालिटीज नहीं है, तुम तो ऑलरेडी डिवाइन क्वालिटीज से युक्त होकर जन्मे हो, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। तो भगवान इस श्लोक में सिंपल कह रहे हैं कि अगर दिव्य गुण बढ़ा लोगे अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, तो समझ लो तुम मोक्ष की तरफ जा रहे हो, मेरे धाम की तरफ आ रहे हो। यहाँ भी आनंद के साथ रहोगे और फाइनली मेरे धाम की तरफ आ जाओगे। और अगर असुरी गुण बढ़ा लोगे तो तुम्हारा बंधन बढ़ता जा रहा है, फंस जाओगे तुम जन्म मृत्यु के साइकिल में। अब भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको क्या समझा रहे हैं। भगवान ने क्या कहा कि दिव्य गुण एक पर्सन को मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं, मुक्ति की तरफ लेकर जाते हैं। मुक्ति की तरफ जाना मतलब आत्मा परमात्मा के पास अपने परमानेंट प्लेस पर पहुंच जाए, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाए, है ना। ये तो होगी फाइनल मुक्ति। फाइनल मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद की मुक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। लेकिन एवरीडे लाइफ में मुक्ति कैसे होगी, क्या है एवरीडे लाइफ में मुक्ति? एवरीडे लाइफ में हमारी मुक्ति हो जाएगी अगर हमने दिव्य गुण की तरफ अगर हम जाते हैं, तो हम लोग नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे, जेलसी, कंपैरिजन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर से दूर रहेंगे, और स्टेबिलिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, समाज कल्याण से युक्त जीवन को जी पाएंगे। और भगवान कह रहे हैं कि आसुरी क्वालिटी जो है ना वो बंधन का कारण, बंधन तो हो गया एक की जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहे, और दूसरा बंधन एवरीडे लाइफ में क्या है, नेगेटिविटी में फंसे रहे कि उसने मुझे ये क्यों कह दिया। ज्यादातर टाइम हमारा इसी में वेस्ट होता है कि जब हम दूसरों की बातें सोचते रहते हैं, जन्मों जन्मों की मतलब 10 साल 20 साल पुरानी बातें सोच के बैठे हुए हैं, ग्रजेस बना के रखी हुई हैं, खुंदगे पाली हुई है अंदर, जितने भी नेगेटिव चीजों के बारे में आप सोच रहे हो ना, आप जानते हो जिनके बारे में, उसमें फंसे रहना एक बंधन ही तो है। अब भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको, देखो हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के आसुरी गुण बहुत बड़े हुए हों और उसको भगवद गीता का सत्संग अटेंड करने को मिल जाए? क्वेश्चन पूछना है हम सबको ये वाला, पॉसिबल है ऐसा क्या? आसुरी गुण, डेमोनिक क्वालिटीज अगर बड़ी हो तो किसी के, तो क्या पॉसिबल है कि हमें भगवद गीता का सत्संग सुनने को मिल रहा है? देखो फ्रेंड्स, भगवद गीता का ज्ञान अगर किसी को मिल रहा है ना, तो उसके अंदर कौन से गुण प्रोमिनेंट है, कौन से गुण आपके हिसाब से प्रोमिनेंट हो रखे होंगे कि उसको भगवद गीता का ज्ञान मिल रहा है? दिव्य गुण प्रोमिनेंट होंगे तब भगवद गीता का ज्ञान देंगे भगवान हम सबको भी, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, पॉसिबल ही नहीं। आप जिसको जानते हो, मान लो किसी में असुरी स्वभाव है, आप चाहते हो वो भगवद गीता का सत्संग अटेंड कर ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सत्संग तक पहुंच जाए, है ना, वो कर ही नहीं पाएगा, वो ये बातें सुन ही नहीं पाता। देखो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर या मेरे अंदर अब कोई आसुरी गुण बचा ही नहीं है, ये बात नहीं हो रही यहाँ, बट कौन से गुण प्रोमिनेंट है, मतलब ज्यादा अधिकता किन गुणों की है, प्रमुख गुण कौन से हमारे अंदर प्रोमिनेंट है, जो भगवद गीता पढ़ने को हमने इम्पोर्टेंट बना लिया हमने जिंदगी। आप रोज 4-4:30 बजे अपने सारे काम या अपने आराम छोड़कर भगवद गीता सुनने या समझने में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो कौन से गुण आपके अंदर प्रधान है, दिव्य या राक्षसी गुण? अगर आपने मान लो किसी को ज्वाइन करवा भी दिया, तो राक्षसी गुण वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, यार किन चक्रों में पड़ गई मैं, है ना, क्योंकि उसको उस टाइम तो कहीं और उलझा हुआ है, वो उसको निंदा चुगली की बातें करनी है, उसको कहीं और अपना टाइम पास करना है ना। तो भगवान कह रहे हैं भाई घबराओ मत, आपके अंदर भी, जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा है ना, अर्जुन को यही कहा ना इस श्लोक में कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर तो ऑलरेडी दिव्य गुणों से युक्त होकर तुम जन्मे हो। तो भगवान हमें भी अर्जुन के माध्यम से कह रहे हैं कि तुम मत घबराओ, तुम्हारे अंदर भी दिव्य गुण प्रधान है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारे अंदर नेगेटिव कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ डिवाइन क्वालिटीज ही अंदर होगी है, ये नहीं बोला जा रहा फ्रेंड्स। और दूसरी गड़बड़ क्या हो जाती है, हम रिलेटिव्स या फ्रेंड के साथ रहते हैं ना दुनियादारी में, और अगर भगवद गीता का ज्ञान नहीं होगा ना, तो लोग आपको आपके दिव्य गुणों के अंदर आपको कंफ्यूज कर देंगे, और ये सच में हुआ है, ये लाइफ में सच में होता है, आपको लगना शुरू हो जाएगा कि ये क्वालिटी नहीं होती, ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए मेरे अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति विनम्र स्वभाव का है और दूसरे लोग चिल्लाकर ही बात करते हैं हमेशा, घर में भी बाहर भी, गरीबों से भी, सबसे मतलब एक हैबिट है कि किसी ने चिल्ला के ही बात करनी है ना, और फिर आप ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाता है ना, जो अपने से नीचे तबके को बहुत ऐसी तैसी कर देते हैं, है ना, अपने आसपास के लोगों की भी कर देते हैं, तो उन्होंने आपको बोलना शुरू कर दिया कि यार तुम किस चीजों में फंस गई, इतनी सिंपल मत रहा कर तू, है ना, नहीं तो लोग तेरे सिर पर चढ़कर नाचेंगे, नहीं नहीं जवाब दे देना चाहिए हमें, तो आपको क्या होगा, आपको लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार ये बात तो सही कह रही है, मैं तो कुछ ज्यादा ही सिंपल हूँ, मुझे ऐसा नहीं बनना चाहिए। एक और नुकसान है जब हम डिवोशन को, शास्त्र पढ़ने को इम्पोर्टेंट नहीं बनाते ना, तो आपको हो सकता है पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हो सकता है कि आप में ये दिव्य गुण थे पहले जब आपका जन्म हुआ था, लेकिन फिर आप दिव्य गुणों को ही अपना दुश्मन बना लोगे, है ना, क्योंकि आपके आसपास बहुत कम दिव्य गुणों वाले व्यक्ति मिलेंगे आपको। और क्या करना चाहिए हमें, हमें राक्षसी गुणों को घटाना चाहिए और हमें दिव्य गुणों को बढ़ाना चाहिए। अब हम भगवत गीता से हम यही सीख रहे हैं, जो हमें एक्चुअली जो डिवाइन क्वालिटीज थी ना पहले, हमें उनको धीरे धीरे वापस लेकर आना। और जो हम दुनियादारी में चलते हुए जो हमने डेमोनिक क्वालिटीज अपनी बढ़ा ली हुई थी, उनको हमें भगवान कह रहे हैं कि नहीं, उनको घटाओ और जो अपनी डिवाइन क्वालिटीज है उनको इनहेंस करो। तो हम करते क्या है लाइफ में, हम करते उल्टा है। हम लोग दिव्य गुणों को घटाने वाला काम करते हैं और राक्षसी गुणों को बढ़ाने वाला काम करते हैं, है ना? क्योंकि हमने गाइडेंस किससे ली होती है फ्रेंड्स? कभी हमने सोचा है कि हम गाइडेंस किससे लेते हैं? मान लो देखो, जिसको हमने अपना रोल मॉडल बनाया हो, मान लो वो फेमस सेलिब्रिटी हो कोई, है ना, हम उसकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं, वो जैसा लाइफ स्टाइल फॉलो करता है या करती है, हम वैसा अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। कुछ गाइडेंस यहाँ से ली, कुछ गाइडेंस दूसरे से ली, शास्त्रों की और भगवान की बातें तो सुनी नहीं। जिनसे भी गाइडेंस ली वो तो ऑलरेडी हो सकता है पहले से ही असुरी प्रवृत्ति में हो, है ना, लेकिन हम उनकी बाहरी वेशभूषा से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली उनका अंदर से कैसे है, ये अंदर से उनका जीवन कैसा है। तो फिर वो आपके जो दिव्य गुण होंगे ना, उनको राक्षसी गुण बता देंगे, है ना। आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप किसी को माफ कर देते हो ना, तो आपको क्या बताया जाएगा? अरे नहीं नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे को तैसा ही होना चाहिए। तभी उसको समझ आएगी ना, अगर उसको जैसे का तैसा करेंगे तभी उसको समझ आएगी, है ना। तो आपको क्या लगेगा, यार मुझे सच में मुझे माफ नहीं करना चाहिए, मुझे तो गुस्सा करने की हैबिट है, उसको मेंटेन रखना है, ग्रजेस रखने की आदत है, उसको मेंटेन रखना है। जिनको हम क्वालिटीज आज समझते हैं ना, वो वीकनेस लगती थी हमें पहले, इसलिए हम अपनी दिव्य गुणों को खराब करना शुरू कर देते हैं, है ना। और वाकई हमें भगवत गीता पढ़ने के बाद अपना एग्जांपल लूं तो मुझे भी अपनी जो क्वालिटीज है ना, कई क्वालिटीज मुझे भी पता नहीं थी, मुझे लगता था कि ये मेरी वीकनेस है, क्योंकि मैं सच में बोलूं मेरे बचपन से ही मैं किसी के बारे में ईर्ष्या नहीं कर सकती थी। कई अच्छी क्वालिटीज थी मेरे में, कुछ भी मेरे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन किसी के पास कुछ भी हो, मैं कभी भी मेरे मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आया। कई क्वालिटीज जब से मैं पढ़ी भगवत गीता, ये जो डिवाइन क्वालिटीज थी, है ना, ये जो पढ़ी मैंने, तो मैंने सोचा कितनी सारी क्वालिटीज मेरे अंदर थी, सरलता, सत्य था, अहिंसा, ये कई क्वालिटीज मेरे अंदर थी। लेकिन जब दुनियादारी में हम चलते हैं तो हमें क्या लगता है कि नहीं नहीं हमारे आसपास के लोग ही हमें समझा रहे होते, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे जीवन जीना होता है, ऐसे नहीं किसी को भी कुछ बोल देते हैं, सच बात नहीं बोलने, मतलब झूठ बोलो। इसलिए क्या होता फिर, हम अंडर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, अपने आप को दूसरों से कम समझना शुरू कर देते हैं। कॉन्फिडेंस की हद से ज्यादा कमी हो रखी थी, मैं अपने आप बात करूं, मेरे में भी बहुत ज्यादा कमी थी कॉन्फिडेंस की, जवाब नहीं देना, गलत हो रहा है बट फिर भी चुप रहना, डाउट आ जाता है, इस बात को लेकर डाउट आ जाता है कि मैं बहुत वीक हूं, जमाना तो बहुत आगे पहुंच गया है, कनिंग लोगों का जमाना है, लेकिन मैं तो कुछ भी स्टैंड ही नहीं करती किसी के आगे, है ना। तो ये सारी फीलिंग्स हैं जो आती हैं, अगर किसी में डिवाइन क्वालिटीज होती हैं तो उनमें ये वाली फीलिंग्स आती हैं। तो भगवान देखो इस श्लोक में क्लियरली हमें एक एक बात का जवाब हमें आराम से मिलता है। हम चलते रहे ना ध्यान से, हमें जो भी अंदर जवाब होते हैं ना हमारे सदियों पुराने, सारे जवाब मिलते हैं हमें। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी जो डिवाइन क्वालिटीज है ना, उनको प्रिजर्व करके उनको इनहेंस करना है, और अपनी जो आसुरी क्वालिटीज है ना, उनको पहचान कर उनको हटाने का धीरे धीरे प्रयास करना। देखो फ्रेंड्स, हमें भगवान के मार्गदर्शन के द्वारा हमें ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो बची खुची नेगेटिव क्वालिटीज है ना, उनका हमें सफाया करना है, उनको घटाने के लिए हमें नित्य निरंतर प्रयत्न करते रहना है। उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि भाई उसको करना है। इसके द्वारा क्या होता है, हमारे अंदर की गंदगी साफ होती है फ्रेंड्स। हम फालतू चीजों से, फालतू की नेगेटिविटी से हम बचे रहते हैं। जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम बाकी चीजों से हम बचे रहते हैं। प्रैक्टिसेस में आपको हमेशा बोलती रहती हूँ कि आपको खुद चॉइस लेनी है। इतनी सारी प्रैक्टिसेस हैं, अर्चा विग्रह की पूजा करो, चैंटिंग करो, जो भी आपको मंत्र पसंद है वो करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में लग जाओ, अपनी कोई हॉबी है उसको कर लो, भोग लगाओ, आरती करो, व्रत रखो, भगवद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करो, शुद्धि करो, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो, है ना। तो ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने पर जो हमारी नेगेटिव क्वालिटीज है ना, जो हमारे अंदर है अभी भी, उसको हमें घटाना है, तो ओवरऑल एक बेटर लाइफ का, एक बेटर फैमिली का, एक बेटर समाज का हमें निर्माण करना है, और सबको मिलजुल कर पॉजिटिविटी अपने आसपास के वातावरण में फैलानी है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण, हरी हरि बोल। तो फ्रेंड्स, अब रिव्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो। हरी हरि बोल,
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल मोना जी, हरी हरि बोल एवरीवन। थैंक यू सो मच मोना जी, आज का ये जो आप चैप्टर आपने कल से स्टार्ट कराया है, देवी और असुरी गुण, सच में ये भगवत गीता का ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, ये मुझे पर्सनली भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब से हमने भगवत गीता पढ़नी शुरू की है तो इसमें जो भगवान ने हमारे अंदर की जो क्वालिटी कल मोना जी ने भी डिस्क्राइब कराई थी, देवी गुण और आज असुरी गुणों के बारे में जो बताया, जो हमारे अंदर ही होते हैं, हम ये ढूंढ ही नहीं पा रहे थे सच में मोना जी। थैंक यू सो मच मोना जी, थैंक यू सो मच कि आपके माध्यम से हम भगवत गीता का ये जो अध्ययन कर पा रहे हैं, और अपने अंदर जो एक गुणों आसुरी गुणों को हम घटाकर देवी गुणों की तरफ बढ़ा पा रहे हैं, ये भगवत गीता श्री के माध्यम से ही हम कर पा रहे हैं। मेरे अंदर भी मैं कहूँ तो बहुत से आसुरी गुण थे, देवी गुण भी थे, पर बट उनको हम पहचान नहीं पा रहे। वही मोना जी अभी वही बता रहे थे ना कि हम जो बात करते थे, मतलब एक पता लगता था कि ये बात करनी है तो हम नहीं कर पाते, तो वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल आया है वो भगवत गीता पढ़ने से आया है। सच में फ्रेंड्स, मेरा भी यही हाल था। तो मैं अब 2 साल से भगवत गीता जुड़ी हुई हूँ इस सत्संग के माध्यम से, तो बहुत सी ऐसी क्वालिटीज जो अपने अंदर पहचान पाई। थैंक यू श्री हरि का, थैंक यू सब आप डिवोटीज का, थैंक यू मोना जी कि मैं खुद को खुद से हम बात कर पा रहे हैं कि हम क्या है हमारे में, तो हमें क्या होना चाहिए। असुरी गुणों के बारे में बता रहे, हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ ये सब हमारे अंदर ही होते हैं, हम कई बार ये बाहर अपने आसपास ढूंढते हैं कि नहीं उसमें है, नहीं हमें किसी में नहीं अपने गुणों को ढूंढना है, अपने ही अवगुणों को ढूंढना है। फिर उनको भगवान से प्रेयर करके हमने देवी गुणों की तरफ बढ़ाने के लिए हम भगवान से प्रेयर की हमारे कि भगवान हमारे अंदर जितने भी विकार हैं वो दूर करो, क्योंकि हम पहचान ही नहीं पाते इस जब संसारिक दुनिया में हम जब आते हैं, मतलब बैठते हैं आसपास के लोग अपने माहौल में, तो हम अपने अंदर को असुरी और देवी गुणों को पहचान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर कौन से ऐसे सही रास्ते पे हमें चलना है और कौन से गुणों को लेकर चलना है। तो सच में मैं इस सत्संग के माध्यम से ही अपने इन असुरी गुणों को पहचान पाई हूँ और उनको खत्म करने की अब कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं कहती कि मेरे पूरे खत्म हो गए हैं फ्रेंड्स, सच में धीरे धीरे जब श्री हरि की तरफ हमने हाथ बढ़ाया, श्री हरि का भी आशीर्वाद हम पर रहा कि उन्होंने हमें इतनी शक्ति दी है कि वो हम खुद को पहचान पा रहे हैं कि हम कहाँ गलत होते हैं, हम कहाँ गलत बातें करते हैं, कहाँ हम असुरी गुण वाले स्वभाव जब हमारे आता है। चिल्लाती में आई भी थी पहले, ये मोना जी ने बताया कि चिल्लाना ये सब जो अपने अंदर थे किसी के सामने, अब हम वो बात पहचान पाते हैं कि जो हमें जो क्वालिटीज हैं, हमको अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर रखनी है और बुरी क्वालिटीज को, जो बुरे आदतों को हमने घटाना है। सत्संग के माध्यम से कर पा रही हूँ, सच में श्री हरि का इतना धन्यवाद करूं जी, कितना भी करूं, और मोना जी का जितना भी धन्यवाद करूं बहुत कम है, क्योंकि इसी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम ये इन अपने गुणों को पहचान पा रहे हैं, और आसपास के डे टू डे लाइफ में भी हम जो हम हमारे करते हैं उनमें भी हम ढूंढ पाते हैं कि कहाँ हमें बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, क्या काम हमें अच्छे करने हैं। तो इन बातों इन चीजों को लेकर सच में मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल काफी बड़ा है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, आज का जो सत्संग था बहुत ही डिवाइन था मोना जी, कल का सत्संग भी बहुत ही डिवाइन था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ममता जी, बहुत अच्छी तरह से आपने सारे श्लोक रिवाइज कर दिए और आपकी तो प्रोग्रेस हम देख ही पाते हैं हमेशा। आप अपना एक्सपीरियंस बताते हो तो कहाँ पे आप चले थे कि आपने कहा था, मुझे भी याद है कि आपने पहला वर्ड आपका मेरे साथ यही था कि मोना अभी तो हमारी एज नहीं है, अभी हम जो भगवद गीता पढ़ने लगे हैं तो जब हम जाने लगेंगे ऊपर तब हमें कोई सुनाएगा, वो भी पता नहीं कोई सुनाएगा या नहीं सुनाएगा, तो उसमें हम क्या समझ पाएंगे सोचो, है ना। भगवद गीता तो मतलब एक जीना सिखा रही है हमें, जो हम अपना मन घड़न जीवन जीते हैं उसको कैसे हमें अपना अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है वो सिखा रही है। तो उसमें क्या करेंगे हम जब कोई हमें सुना भी देगा तो। थैंक यू सो मच ममता जी।
सच, हाँ जी मोना जी, सच में जो आप कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, तो वो मैं अपने अंदर भी एक देख पा रही हूँ सच में। मतलब इतना इतना मतलब पता चलता है कि जो बुरी आसुरी वाले लोग होते हैं, जैसे आपने बताया कि जो चिल्ला के जिनकी आदत बन चुकी होती है, हर छोटी से छोटी बात पे चिल्लाना ही चिल्लाना है, मतलब धीरे से बात नहीं करनी। जब हम वो बातें करते हैं तो हमें वो गिराने की कोशिश करते हैं। सच में अभी हम ये चीज मतलब खुद में महसूस भी कर पाते, पहले था कि नहीं अगर किसी ने एक बात बोली है तो दो और सुना दो, तो उसी में था कि आसपास वाले नहीं सुनाना चाहिए किसी को। तो सच में इन बातों को, आसुरी गुणों को मैं अपने अंदर सच में पहचान पा रही हूँ मोना जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मोना जी, सच में बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल सही कहा ममता जी कि ये मतलब लाइफ ट्रांसफॉर्म करती है और बिल्कुल हमारी जो पर्सनालिटी है उसको ओवरऑल हमें सुधारती है हमें, है ना। मतलब जो भी हमारे हेल्थ के देखो पांच कंपोनेंट्स होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ, है ना। इन पांचों के आसपास ही हमारी लाइफ घूमती है ना। तो हमें पता चल जाता है एक्चुअली हमें कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। क्या हमें फैमिली लाइफ में वर्क करने की जरूरत है तो हम उस पर वर्क करने लग जाते हैं, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ पे वर्क करने की जरूरत है तो हमें उस पर भी वर्क करना है, फिजिकल हेल्थ में वर्क करने की जरूरत है तो हमें वहां पे भी, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि संकल्प मैंने फिजिकल हेल्थ के लिए लिया, मेरी फिजिकल हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो मैं क्या कर पाऊंगी आगे लाइफ में, है ना। तो मुझे फिजिकल हेल्थ पे वर्क करना है, मुझे ये संकल्प लेने है कि मुझे क्या क्या मेरी चीजें रिक्वायर्ड है ना। मैं खाने का ध्यान रखती थी ना, मैं एक्सरसाइज का ध्यान रखती थी अपना, सबको सब कुछ खाने को दूंगी लेकिन अपने लिए वही होता है कि चलो छोड़ो हो गया जो खाना, जैसे हम लेडीज की हैबिट होती है ना। तो मुझे लगा नहीं मुझे अपना भी ध्यान रखना है ना, और बाकियों का तभी मैं ध्यान रख पाऊंगी कि अपना ध्यान रखूंगी। तो इस तरह से हमें समझ आने लग जाती है अंदर से, अपने आप ही भगवान हमें गाइड कर रहे होते हैं, भाई पहले तो अपनी फिजिकली हेल्थ का ध्यान रख लो, है ना, अपनी फिजिक का ध्यान रखो, फिर तुम आगे कुछ कर पाओगे ना। प्रॉब्लम हमारी फिजिक में और हम कुछ और ही करने बैठे हुए हैं, है ना। प्रॉब्लम हमारी मेंटल हेल्थ में और हम कर रहे हैं कुछ और ही है। तो हमें उन चीजों को बढ़ाना नहीं है, अपना सोचना है किस चीज में मेरे को प्रॉब्लम है लाइफ में, उस चीज पे वर्क करने की पूरे जान लगा देनी है। तो भगवान तो हमारे साथ हैं और उसमें हमें सक्सेस तो मिलनी मिलनी है। थैंक यू सो मच ममता जी। तो ठीक है, हम फिर भजन की तरफ बढ़ते हैं। आज भजन की रूपाली जी आपकी टर्न है, तो आप गा सकते हो। हरी बोल,
हरी हरी बोल दी, हरी हरी बोलो जी, हरी हरी बोलो जी दी। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा था हमेशा की तरह, और इससे मेरा मेरे को जो थोड़ा सा समझ आया, मैं आपको बस इतना बोलूंगी कि आपने हमें ये समझाया गीता जी के माध्यम से कि असुर गुण और देवगुण के बारे में, कि जो देवगुण होते हैं वो हमारे अंदर ही होते हैं और असुर गुण भी, और हमें अपने जो देवगुण है उनको बढ़ाना है और असुर गुण को कम करना है। हमें किसी किसी से जैसे जलसी नहीं करनी है और लड़ना नहीं है, और साथ में ऐसे मतलब कि बुरी आदतों की तरफ कम जाना है और अच्छी एक्टिविटी की तरफ ज्यादा रखना है ध्यान, और ना गलत किसी के बारे में बोलना है, ना निंदा चुगली करनी है। बस ये कि भगवान जी की तरफ अपना अपने आप को उनकी उनकी चैंटिंग में और उनकी अच्छी अच्छी बातें जो जैसे हमें गीता में सिखाते हैं उनकी तरफ ध्यान लगा के और अच्छी तरफ ही जाना है, और बस इतना ही। हरी हरी बोल जी। और मैं आज का भजन भोलेनाथ जी के ऊपर बोल रही हूँ। हरी हरी बोल जी। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकर नाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकर नाथ जी, जैसे मस्तक में चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाओं में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाओं में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, दशों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवाओं में। तुम हो जहाँ वहाँ होती है अमृत की बरसात जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। देवो हो तुम देवो के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भगवान है हम ते पुरारी, आप हमारे स्वामी हो। देवो हो तुम देवो के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम ते पुरारी, आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी है हमको नंद की सवारी जी। युगो युगो से है पार्वती तुम पे बोले बलिहारी जी, जब लाओगे तुम ही लाना द्वारे मेरे बरात जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, शंभुनाथ जी। प्राण मेरे बसते हैं तुम में, तुम भी तुम बिन मेरा नहीं गति। अग्नि कुंड में हो के बसम तुम हुई थी मेरे लिए सती। शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिव अधूरे हैं। जन्मों तक ना टूटेंगे ये जन्म जन्म के नाते हैं। तुम ही मेरी संत्या हो गोरी, तुम ही मेरी प्रभात जी। वचन है मेरा ना छोड़ेंगे कभी तुम्हारा हाथ जी। सदा रहेगा सदा रहेंगे गौरी शंकर साथ जी। ओ गौरी पार्वती, ओ भोलेनाथ जी, शंकर नाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकर नाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, शंकर नाथ जी। ओ मेरा भोला है मेरे साथ साथ में झूम झूम के नाचूं। मेरा भोला है मेरे साथ साथ में घूम घूम के नाचूं। ओ मेरा भोला है मेरे साथ साथ में घूम घूम के नाचूं। ओ मेरा भोला है मेरे साथ साथ में झूम झूम के नाचूं। हरी हरी बोल जी।